विचार है आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन। आम व्यक्ति इसको ठीक ठीक नहीं समझता कि आध्यात्मिक जीवन क्या होता है और सांसारिक जीवन क्या होता है। इसलिए आज एक मौका मिला है, इस विचार को समझने की कोशिश करें। जो सांसारिक जीवन होता है, जिसको आम व्यक्ति संसार में व्यतीत करता है, उसमें मनुष्य की मानसिक हालत क्या होती है, पहले ये समझें। मैं जिस समाज में रहता हूं, जिस गृहस्थ में रहता हूं, हम एक दूसरे को किस रूप में जानते हैं, क्या समझते हैं एक दूसरे को? मेरे सामने जो व्यक्ति है, मैं जानता हूं उसका एक नाम है, उसका एक रूप है और उसका एक स्वभाव है। ये तीन चीजें हमको, जो व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आता है, उसके बारे में पता लग जाती है। और जो व्यक्ति मेरे सामने है, वो मेरे बारे में क्या देखता है, क्या जानता है, वो भी यही जानता है। मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा नाम क्या है और मेरा रूप कैसा है। कहने का मतलब ये है, जो भी सांसारिक व्यक्ति है, वो सामने वाले को देहधारी मनुष्य समझता है, देह करके ही उसको वो जानता है, और जो सामने वाला व्यक्ति वो मुझको भी देह करके ही जानता है। इससे ऊपर कोई सोच मेरी उसके बारे में, उसकी मेरे बारे में नहीं होती। तो हम सब मिलकर संसार में कर्तव्य बोध से, जैसे कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसके वहां कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं, उसके एवज में, कर्तव्य पूर्ति के एवज में उसको पैसा मिलता है, सहूलियतें मिलती हैं। उसी प्रकार घर में रहते हुए मेरे कर्तव्य हैं। मैं यदि अपने बचपन को देखूं, तो जब से मैंने होश संभाला, अर्थात अपने बारे में होश आया, तब मेरा एक पहला कर्तव्य क्या बना कि पढ़ाई करना मेरा कर्तव्य है। उसके बारे में माता पिता जो कहते हैं उसको मुझे मानना चाहिए, यह भाव सबसे पहले आपके अंदर आता है। और इस कर्तव्य बोध के साथ जब आप पढ़ाई करते हो, तो आपको अपनी परेशानियों का पता होता है कि हर वर्ष जो मैं स्कूल में पूरा करता हूं, पूरे साल जिस कक्षा में भी हूं, मानिए आप फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा हूं मैं, तो मुझको एग्जाम पास करने की चिंता रहती है और एक एक साल करके मैं पूरी करता हूं। फिर सिक्स क्लास आती है, फिर सेवेंथ आती है, फिर एट्थ आती है। अभी तो मैं माता पिता का कहना मानकर शिक्षा ग्रहण करता हूं, लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मेरे अंदर यह बोध आने लगता है, संसारियों को देख देखकर, सोसाइटी को देख देखकर, कि भाई यदि पढ़ाई मैंने ठीक तरह से नहीं की तो फिर मेरी आमदनी नहीं होगी। बड़ा होगा तो मैंने शादी भी करनी है, मैंने सर्विस भी करनी है, पैसा कमाना है। यदि एजुकेशन मेरी ठीक नहीं हुई तो पैसा कहां से आएगा, मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? तो आगे का जो भविष्य आपका, उसका बोध आपके अंदर हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर ये बोध आने लगता है, और आप अपना जीवन जीने के लिए वो पढ़ाई जरूरी समझने लगते हो। फिर आप पढ़ते हो, लेकिन आपको पता है कि हर साल जो मैं कक्षा पास करता हूं उसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एग्जाम के वक्त किस मानसिक तनाव से मैंने गुजरना होता है, सब मुझको पता है। और ये इच्छा हर स्टूडेंट की यही होती है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी मेरी पढ़ाई पूरी हो। पढ़ाई उसको एक बोझ लगने लगता है, एक सजा लगने लगती है, उसमें उसको सुख महसूस नहीं होता। विद्यार्थी जीवन वास्तव में देखा जाए तो एक तप का रास्ता है, जहां कष्ट सहन करके आदमी एजुकेशन ग्रहण करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक नया ख्वाब मन के अंदर पलता है कि मेरी शादी होगी। शादी का कितना चार्म एक युवक के अंदर, युवती के अंदर होता है, हम सब अपने अपने अनुभव से जानते हैं। लेकिन जो इतनी प्रसन्नता की चीज है, इतने सुख की चीज है, जो दूर से नजर आती है, करने के बाद पता लगता है कि शादी में केवल एंजॉयमेंट नहीं मिलता, उसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां साथ में आ जाती हैं। पति पत्नी साथ रहते हैं, दोनों ही सुख भोगने के लिए विवाह करते हैं, लेकिन स्वभाव आपस में टकराता है। जब स्वभाव टकराता है तो दोनों कोशिश करते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। उसको यह ख्याल नहीं रहता कि जिस प्रकार मुझको अपनी इच्छा पूरी करके खुशी मिल रही है, तो मेरे पार्टनर को भी तो अपनी इच्छा पूरी करके खुशी मिलेगी। लेकिन वासना का जोर इतना होता है कि आप देखते होंगे समाज में पति पत्नी में अक्सर क्लैश होते रहते। घर जो शांति का स्रोत था वो क्लेश का स्रोत बन जाता है। फिर परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं। जो घर में लड़की आई तो अन्य सदस्य भी उससे आशा करते हैं, ये आइए हमारी सेवा करेगी, हमको सुख देगी। वो आइए खुद सुख भोगने के लिए, घर वाले उससे सुख भोगने की आशा करते हैं, तो क्लेश तो होना ही होना। तो इसीलिए आप ज्यादातर सोसाइटी में जो देखेंगे वो मनुष्य मजबूरी में तनावग्रस्त होकर जीता है, क्योंकि जिम्मेदारियां जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। और जिस खुशी की कल्पना की थी वो घटती चली जाती है, जीवन की वास्तविकता जो सामने आती चली जाती है, तो जो खुशी की कल्पना की थी वो घटती चली जाती है। साल दो साल निकले नहीं शादी के, संतान सामने आ जाती है। अब हम सब जानते हैं कि भाई एक संतान का पालन करना कितना कठिन काम है। आजकल बड़े शहरों में तो हाल ये हो गया है कि माता पिता को अपनी संतान पालने की फुर्सत ही नहीं है। मैं कई केसेस ऐसे जानता हूं, माता पिता हैं, एक बच्चे को भी नहीं पाल सकते, दोनों सर्विस में है, ना सर्विस छोड़ सकते ना बच्चे को छोड़ सकते। तो कहते हैं नानी के घर बच्चा पल रहा है आपका, या क्रच के अंदर बच्चा पल रहा है आपका, नौकरानी में बच्चे को छोड़ रखा है आपने। विचार करने की बात यह है, ये परिस्थितियां हम सब फेस करते हैं, पढ़े लिखे लोग फेस करते हैं, और वो संतान भी उस समय भी एक ही कल्पना हमारी रहती है कि ये हमको सुख देगी, इससे हमको खुशी मिलेगी। लेकिन संतान का जब तक वो 20-25 साल की नहीं हो जाती, एक सिर पर बोझ ही रहता है, उसका विकास ही करते रहते हैं, उसको भविष्य के लिए तैयारी करते रहते हैं, और अंत में कोशिश यही होती है किसी तरह इसकी शादी हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, तब हमारी जिम्मेदारी खत्म, फिर हम दोनों का स्वतंत्र जीवन होगा, चैन से जिएंगे। लेकिन जो गृहस्थ जीवन से गुजरते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ऐसा वक्त आता है कि जब फुर्सत मिलती है, कोई रिटायर हो गया, किसी के बिजनेस को बच्चों ने संभाल लिया, काम से थोड़ा फुर्सत मिल गई, तब क्या देखता है जो अपनी ओर देखता है, कहते शरीर में तो सामर्थ्य नहीं रही, जो घूमने की उमंग थी, जो खाने पीने की उमंग थी, शरीर उस लायक बचा ही नहीं है। कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है, कोई ना कोई चिंता पकड़ लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक जीवन जीते हुए मनुष्य सुख की कल्पना ही करता रह जाता है। यदि अपने जीवन का जब से उसने होश संभाला है और आज तक मान लिया उसकी 60 की आयु है, किसी की 50 की आयु है, यदि वो ईमानदारी से हर वर्ष का एनालिसिस करके देखे, हर वर्ष का विश्लेषण करके देखे, तो हर वर्ष उसको ऐसा ही मिलेगा जिसमें जिम्मेदारी तो उसने ज्यादा संभाली, सुख उसको कम मिला। हर वर्ष उसको ऐसा ही मिलेगा। यदि आप अपना अकाउंट ईमानदारी से हर वर्ष का तैयार करें, सुख और दुख को, तो इसीलिए सत्पुरुषों को कोई वहम नहीं है। वैदिक काल से सत्पुरुषों ने निर्णय कर रखा है। वैदिक काल में निर्णय आया था, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। वो जीने का रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि ऋषि तो जीने का रास्ता ही बताएगा आपको। हमने जीने का रास्ता ये संसारी जीवन चुना है। वो संसारी जीवन को नेग्लेक्ट नहीं करते, छोड़ने को नहीं कहते, होश में रहकर व्यतीत करने को कहते हैं। वो कहते हैं दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत। मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। किस रूप में सब कुछ दुखी ही है कि जब मैं अपनी पढ़ाई का एक वर्ष याद करता हूं, मान लिया मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूं, 12वीं क्लास मैंने पास कर ली, अब पूरे साल का मैं जरा अकाउंट देखूं किस किस परिस्थिति से गुजरा। मन करता था मैं खेलूं, मित्रों के साथ घूमूं फिरूं, लेकिन कैरियर का बोझ सिर पर था, कैरियर नजर आता था। यदि मैंने ठीक तरह से पढ़ाई नहीं करी, कोचिंग ठीक तरह से नहीं करी, तो क्या होगा कि मैं पिछड़ जाऊंगा, लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, कंपटीशन। और जो विद्यार्थी जीवन आज भी व्यतीत कर रहा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि ये कंपटीटिव लाइफ कितनी कठिन होती है। 80% का विद्यार्थी भी आशा नहीं कर सकता कि मुझको मेरा सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाएगा। आजकल हालत ये है, आप दिल्ली में कॉलेजेस की देखिए, किरोड़ीमल कॉलेज है और भी कई कॉलेजेस हैं, जहां एडमिशन की परसेंटेज 100% तक है। 100 में से 100 नंबर है उनका सिलेक्शन हो रहा है एडमिशन के लिए हायर क्लासेस, और घटके ज्यादा से ज्यादा नीचे आती है कुछ कॉलेजेस की, वो 97% तक आती है, इससे ऊपर तो एडमिशन ही नहीं होते। 97 से 100% के लड़कों के एडमिशन हो रहे हैं अच्छे कॉलेजेस के अंदर। कंपटीशन का वो जमाना आ गया आज। तो विचार करने की बात यह है कि संसार में रहना कितना कठिन है। जो बिजनेसमैन है वो अच्छी तरह से जानता है कितना कंपटीशन है मार्केट के अंदर। रात दिन चिंता ही सताई रहती है कि मेरा बिजनेस डाउन ना हो जाए। कितना भी पुरुषार्थ कर ले, लेकिन भय बना रहता है। तो सांसारिक जीवन हम सब एक ही आशा से जीते हैं कि सुख मिलेगा, जीवन सुखी होगा। लेकिन पास्ट लाइफ का जब एनालिसिस करते हैं, तब यही निर्णय निकल कर आएगा, आपकी बैलेंस शीट यही बोलेगी कि सुख मिला तो बीच बीच में ऐसे ही मिला, जैसे कोई रेगिस्तान में यात्रा कर रहा हो, एक मील चल लिया धूप के अंदर, सामने उसको एक हरा बाग, हरा पेड़ दिखाई पड़ रहा है, सोचता है अब तो ठंडक मिलेगी। एक मील तपश सहन करने के बाद वो पेड़ के नीचे 5-10 मिनट विश्राम करता है, फिर तपन की तरफ चल देता है। हमारी भी संसार में यही स्थिति है, कुछ देर के लिए सुख मिलता है, फिर वही तनाव। दिन भर के लिए, आजकल तो स्त्री भी कमाती हैं पुरुष भी कमाते हैं, दिन भर के लिए टेंशन पालने के लिए हम चल जाते हैं जॉब पर बिजनेस के लिए, सोचते हैं घर जाकर चैन मिलेगा, घर पर आकर अलग तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, चैन का। तो क्योंकि हमको दूसरा रास्ता जीने का पता नहीं है, इसलिए मजबूरी में हम इसी को जीवन समझते हैं, जो ये सांसारिक जीवन है इच्छाओं की पूर्ति का, जिसकी जैसी इच्छाएं उसी में हम सुख महसूस करते हैं, उसी में जीवन की सफलता महसूस करते हैं। लेकिन ऋषि तो इस भेद को जानते हैं, वो हमारे तन को नहीं देखते, वो हमारे मन को देखते हैं, मन में क्या हालत चल रही है हमारी, वो उसकी रीडिंग करते हैं, किस मानसिक बेचैनी से गुजर रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तयेत, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। और हमारे विकास का रास्ता क्या है, कामनाओं और भोगों की जितनी ज्यादा वृद्धि कर लोगे और उस वृद्धि करने के लिए जितनी ज्यादा इनकम बढ़ा लोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा और सुखी जीवन हो जाएगा, सफल जीवन हो जाएगा। लेकिन अंदर से हम जानते हैं जब बिजनेस बढ़ता है तो सिर पर कितना बोझ, उस बिजनेस को संभालने का, उसका मैनेजमेंट करने का कितना बोझ मन पर बढ़ जाता है। पहले साधारण सी दुकान थी, खर्चा चल जाता था, फिर भी चैन की नींद सो जाते थे, अब तो सोने के लिए भी एक बज जाता है, दुकान बंद करने के लिए भी 10-10 बज जाते हैं। ऐसे ही बड़ी बड़ी ऊंची पढ़ाई कर लेते हैं, फिर बाद में किसी कंपनी के सीईओ बन गए, कलेक्टर बन गए, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए, दुनिया तो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखती है, लेकिन जो उस पोस्ट पर बैठे हुआ है वही जानता है किसी काम के लिए फुर्सत नहीं उसको, इतनी जिम्मेदारियां। मान लिया एक प्राइम मिनिस्टर ही है, सबको बड़ा अच्छा लगता है, अरे हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो दुनिया के राजा हो जाएंगे हमको, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जानता है कि वो ठीक चैन से सो तक नहीं सकता, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितनी आशाएं लोगों की होती हैं, पूरे देश की पब्लिक की आशा उसे एक व्यक्ति पर टिकी हुई, वो कैसे चैन से सो सकता है, कैसे चैन से जी सकता है, रात दिन जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां, सुख भोगने की तो फुर्सत ही नहीं उसको, क्या सुख भोगेगा वो। लेकिन हमारी दृष्टि में वो सुख भोग रहा है, उसका नाम हो रहा है, वो आनंद से जी रहा है, हम भी कल्पना कर रहे हैं हमको भी ऐसा जीवन मिल जाए। लेकिन ऋषि अंदर के दर्द को समझता है। तो याद रखिए, ये जो मेरा सांसारिक जीवन है ये नकल वाला जीवन है, अकल वाला जीवन नहीं है। नहीं तो ऋषि ये कभी बात नहीं कहता कि काम भोगान निवर्तये, कि वे ऑफ लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपकी जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कामनाओं और भोगों से हर वर्ष आपके जीवन में कमी होती रहे, कमी होती रहे, अपना स्वभाव आपका ऐसा बन जाए कि कम चीज में ही, या यूं कह लीजिए कि सादे जीवन में ही आपका गुजारा होने लगे और जीवन की सफलता भी नजर आने लगे। लेकिन यदि आप संसारी दौड़ में हो और संसारी बुद्धि आपकी है तो यह काम आपके साथ कभी नहीं होने वाला, आप तरसते रहोगे, इसके पास तो लाख रुपए महीने की इनकम है, मेरी तो 20,000 की इनकम है, तरसते ही रहोगे इसको। और यदि किसी सुखी इंसान को देख भी लिया आपने तो सुखी इंसान को देख के तो खुश होना चाहिए ना, मैं खुश नहीं होता, मेरे अंदर ईर्ष्या हो जाती है, इसके पास इतना है और मेरे पास नहीं है। जो सांसारिक बुद्धि है वो ईर्ष्या करती है दूसरे को सुख को देखकर, ये कैसा जीवन है, कैसा मानव है आज का। तो सत्पुरुष कहते हैं जिस मनुष्य ने ठीक जीवन जीना होता है, कौन बताएगा ठीक जीवन, जो अवतार हैं, जो ऋषि हैं, जो शास्त्र हैं, वही बताएंगे कि ये ठीक जीवन क्या है। तो वह कहते हैं कि तू जरा अपनी तरफ देख, अभी तो तू क्या है ये दूसरे की दृष्टि से देख रहा है। मैं शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मेरा रूप ये है, ये दूसरे की दृष्टि मुझको बता रही है कि मैं क्या हूं, और वो क्या है मेरी दृष्टि बता रही है। तो ये सारा का सारा देखा देखी अभ्यास है। अब सत्पुरुष विचार की बात करते हैं। जिसने ठीक जीवन जीना होता है उसे ठीक जीवन का नाम ही आध्यात्मिक जीवन है। उसको अपने बारे में खुद विचार करना होता है कि मैं क्या हूं, तो उसको सत्पुरुष कहते हैं। साधारण सी बात कहते हैं, तू जानता है ना कि तू संसार के कारण दुखी है, शरीर के कारण दुखी है, लेकिन जरा विचार करके देख, जिस समय तू सोता है, सोने के पश्चात जब तुझको स्वप्न दिखाई पड़ता है, तो स्वप्न में भी तू इसी प्रकार सुखी दुखी होता है ना जिस प्रकार तू जागृत हालत में, या उसमें कोई अंतर होता है? आप बड़े आराम से कहते हो नहीं बात तो ठीक है वैसे ही होता है, जैसे इस जागृत हालत में मेरी मैं सुख दुख महसूस करता हूं, ऐसी स्वप्न के हालत में भी सुख दुख महसूस करता हूं, लेकिन जागृत हालत में तू शरीर बन के घूम रहा था, तू अपने आप को शरीर ही समझ रहा था, शरीर को ही कारण दुख कारण सुख समझ रहा था। अब स्वप्न में तो ये शरीर नहीं है, ये तो सो रहा, तुझे पता ये सो रहा, फिर स्वप्न में तू सुखी दुखी क्यों हो रहा? फिर तू सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, ये स्वप्न मेरे मन की कल्पना है, ये वास्तविकता नहीं है, ये मेरे मन की कल्पना है। इसका मतलब क्या हुआ? सत्पुरुष कहते हैं ये तेरा वहम है कि तेरे सुख दुख का कारण शरीर है और ये संसार है, तेरे बारे में सत्य ये है कि तेरे सुख दुख का स्रोत मन है। और अध्यात्म कहता है कि मन देह के साथ मरता नहीं है, देह जब मरती है तो सारे संस्कार जो आपने देह से कर्म करके तैयार किए हैं, जो स्वभाव आपने कर्म करके तैयार किया है, वो सारा मन के अंदर सुरक्षित रहता है, और बचपन से यही मन आपको प्राप्त होता है नई देह के साथ। अब जैसे अभी आप महाराज जी की जीवनी सुन रहे थे, तो महाराज जी ने खुद क्या कहा था कि प्रेमी जब इनकी 3 वर्ष की आयु थी तब इनको पूरा बोध था कि संसार क्या है और ईश्वर क्या है। हमको पता होता है क्या? उनके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, उनके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे कि बचपन से ही उनके मन के अंदर वो संस्कार सुरक्षित थे, मन उनके मन को उनका ईश्वर में लगता था, संसार में नहीं लगता था। हमारा मन ईश्वर में नहीं लगता, संसार में लगता है। इसका मतलब मेरा जो बाहर का जीवन है ये मेरे मन पर निर्भर करता है। इसलिए वाणी कह रही है, निर्णय दे रही है, सब जग मन का खेल है कर अंतर्माही विचार। और अभी अभी वाणी जो आप उच्चारण कर रहे थे वो भी यही कह रही है कि मन की क्रीड़ा अत दुखदाई, 3 काल में जीव तपताई। मैं जीव हूं, वाणी निर्णय कर रही है मैं जीव हूं। कौन है जीव? जिस पर मन का असर हो रहा है। मैं जिस समय स्वप्न देख रहा हूं उस समय मैं देह नहीं हूं, क्योंकि देह तो मेरी सो रही है। जागने पर मुझे कोई वहम नहीं, मुझे पता है कि ये मेरी देह सो रही है, स्वप्न में मैं ये देह नहीं था, लेकिन मैं सुखी भी हो रहा था, दुखी भी हो रहा था, भयभीत भी हो रहा था, चिंतित भी हो रहा था। वो किस कारण से हो रहा था? वो मैं अपने ही मन के कारण से हो रहा था, लेकिन जागृत हालत में मैं उसको मन को भूला रहता हूं, मुझे शरीर दिखाई पड़ते हैं, शरीरों के साथ व्यवहार करता हूं, मन से मेरी दृष्टि हट जाती। अब सत्पुरुष आपकी इस डिफेक्टिव दृष्टि को दुरुस्त करना चाहते हैं, इसलिए ईश्वरीय वाणी हमको जागरूक करने के लिए पैदा हुई है। तो वाणी क्या गाइड कर रही है आपको, मनुआ नित ही नित डोलाई, मन तो हमेशा ही बेचैन करता है आपको, प्रभु की भगत से शांत समय। मानसिक बेचैनी से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं, प्रभु की भक्ति से मैं मानसिक बेचैनी से मुक्त हो सकता हूं। क्यों हो सकता हूं, इसलिए हो सकता हूं कि जो आध्यात्म का रास्ता है, जो ईश्वर का रास्ता है, वो मन के अंदर सतोगुणी स्वभाव का निर्माण करता है। और जो ये सांसारिक जीवन है, देह बनकर जो मैं जीता हूं, मैं भी अपने को केवल देह समझता हूं, दूसरों को भी देह समझता हूं, ये जो मेरी अज्ञान की दृष्टि है, ये मेरे मन के अंदर रजोगुणी और तमोगुणी संस्कार का निर्माण करती है। ज्यादा पैसा कमाओ, हाईएस्ट एजुकेशन अटेन करो और ज्यादा से ज्यादा सुख भोग इकट्ठे करो, जीवन सुखी हो जाएगा। इस निर्णय के साथ जो जीवन जीता है, इसको रजोगुणी जीवन कहते हैं। ये रजोगुणी जीवन, और रजोगुणी जीवन का परिणाम क्या होता है, गीता बड़ा स्पष्ट कर रही है, सूत्र होते ना शास्त्रों में, रजसाहतु फलम दुखम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण का परिणाम दुख है। यदि आप साधारण रूप में समझना चाहें तो घर में जो हमारा बालक पलता है, या मेरे घर में नहीं भी है तो दूसरे के परिवार में जो बालक पलता है, उसको देखकर मैं इस बात का निर्णय कर सकता हूं। जिस बालक के अंदर इच्छाएं ज्यादा होंगी, हम कहते हैं बड़ा ही चंचल बालक है, जिसकी वस्तुओं की डिमांड ज्यादा होगी, हम सबका अनुभव ये बात बोलता है कि वो खुद भी परेशान रहेगा, माता पिता को भी परेशान करेगा। माता पिता यही सोचते थे कब बड़ा होगा ये, कब ये समझदार होगा, कब अपनी जिम्मेदारी समझेगा। इस बालक को पता ही नहीं है, एहसास ही नहीं है कि इसकी इच्छाओं के कारण माता पिता कितने परेशान होते हैं, कितने दुखी होते हैं। और हमको नहीं पता कि हमारी गलतियों के कारण ये समाज कितना दुखी होता है, देश कितना दुखी होता है, मेरा पति कितना दुखी होता है, मेरी पत्नी कितनी दुखी होती है, मेरे माता पिता कितने दुखी होते हैं, हमें कहां एहसास होता है। अपनी वासना का, अपनी इच्छाओं का जब बुखार चढ़ता है तो आंख अंधी हो जाती है। और इसी अंधी आंख के बारे में वाणी निर्णय कर रही है, मनुआ नित अंधकार विचारे मिल सत्संग पावे उजियारे। मनुआ नित अंधकार विचारे मिल सत्संग पावे उजियारे। ये वासना जो डिजायर है ना संसार की, इसको वाणी अंधकार कह रही है। क्योंकि जिसके पीछे हम सुख देख रहे हैं ना, उसके पीछे अशांति है। कहीं सुख मिला भी ना तो उसके पीछे अशांति साथ में मिलेगी आपको, बेचैनी साथ में मिलेगी, सुख भोग कर भी चैन नहीं मिलने वाला। इसलिए एक ही रास्ता है, मिल सत्संग पावे उजियारे। सत्संग कहते हैं सत्पुरुषों के या ईश्वर के सत्विचार को। जैसे ये वाणी प्रकट हुई है, सत्पुरुष के द्वारा प्रकट हुई है, लेकिन सत्पुरुष खुद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि प्रेमी ये इनके बस की बात नहीं है, प्रभु का हुक्म बड़ा सख्त है, जैसा वो बुलवा रहा है वैसा बोला जा रहा है, ये इनके बस से बाहर की बात। अब बताइए, एक पूर्ण ऋषि है लेकिन वाणी ईश्वर हुक्म से आ रही है उसी शरीर के द्वारा, उसका शरीर ये सिद्ध कर रहा है कि ईश्वर इसके अंदर निवास कर रहा है, वो उस ऋषि के शरीर का उपयोग कर रहा है। किस वास्ते, हम भटके हुए मनुष्यों के वास्ते। हमें कौन समझाएगा, कौन राह दिखाएगा, जिसकी नकल करते हैं वो तो भोगों में फंसा हुआ है, वो तो वासना के गहरे जाल में फंसा हुआ है। जब वासना जोर मारती है, इच्छाएं जोर मारती हैं, ऐसा कौन सा दुनिया का पाप है जो हम नहीं करते, सारे अखबार भरे पड़े हुए हैं पापों से, देख लीजिए आप, ऊपर टॉप से लेके नीचे तक सारी लिस्ट देख लीजिए, शहर देखना हो तो डीएम से लेकर सारे ऑफिसर देख लिए, सारा स्टाफ देख लिए, कोई भी डिपार्टमेंट देख लिए, भ्रष्टाचार से लबालब भरा हुआ। हमको डर लगता है हमारे देश का क्या होगा, लेकिन अपनी वासना से हमको डर नहीं लगता। अरे वासना तो जो मेरे अंदर पल रही है वही तो इनके अंदर पल रही है। जिसके अंदर वासना का संयम है वो ईमानदारी से जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसके अंदर वासना का संयम नहीं है वो बेईमानी करके जीवन व्यतीत कर रहा है, दूसरों के सुखों पे डाका डालने को भी तैयार है, दूसरे की बहन बेटियों को उठा के ले जाने को भी तैयार है। ये वासना आपको कहां ले जाकर डुबोती है आज विचार करके तो देखो। वासना अंधी होती है। ये वाणी बिल्कुल ठीक कह रही है कि मनुआ नित अंधकार विचारे, मेरे मन के अंदर ये अंधकार पल रहा है। इसलिए गीता चेतावनी दे रही है कि रजसाह तू फलम दुखम रजोगुण का परिणाम, अर्थात संसार के भोगों में वृद्धि करना, इसको सुखी जीवन समझना, ये अंधकार है, ये आपके जीवन को डुबो देगी। वर्तमान जीवन भी आपका नरक में जाएगा और नया जन्म जो मिलेगा, क्योंकि मन यही होगा, ये बिगड़ा हुआ मन आपको बचपन से ही मिलेगा, तो अगला जन्म भी आपका बर्बाद होगा। और पुनर्जन्म कोई टेढ़ी बड़ी चीज नहीं है, बहुत कठिन चीज नहीं है, इसको समझना भी कठिन नहीं है। जिस समय आप स्वप्न देखते हो ये आपके पुनर्जन्म का ही तो एग्जाम्पल है। पुनर्जन्म किसे कहते हैं? जब मैं नई देह के द्वारा कर्म करता हूं, उसके द्वारा सुख और दुख भोगता हूं, उसको मैं पुनर्जन्म कहता हूं। तो जिस समय इस समय जागृत हालत में हूं, मैं इस देह के द्वारा कर्म कर रहा हूं, सुख दुख भोग रहा हूं। जिस समय मैं स्वप्न की हालत में हूं, उस समय यह देह, इसका मुझे होश ही नहीं है, उस समय नई देह मुझको नजर आ रही है, उस देह से कर्म कर रहा हूं, उस देह से सुख दुख भोग रहा हूं। तो भैया यही तो पुनर्जन्म है। स्वप्न की देह मन ने ही तो तैयार की ना, संसार का कोई मेटेरियल तो यूज नहीं हुआ वहां पर। तो जिस समय इस देह की मृत्यु हो जाती है, कैसी मृत्यु? परमानेंट मृत्यु। स्वप्न के समय आप यूं समझ लीजिए कुछ देर के लिए देह से मेरा छुटकारा मिल गया इस वर्तमान देह से, लेकिन मौत के वक्त इस देह से परमानेंट छुटकारा मिल जाता है, लेकिन देह से छुटकारा मिलता नहीं है। सारा अध्यात्म विद्या कह रही है कि बीच में टाइम गैप कोई है ही नहीं, इस देह की मृत्यु होने में और नई देह प्राप्त होने में बीच में टाइम गैप नहीं है, इसलिए आपकी लाइफ कंटिन्यूस है। इसलिए सब कुछ कहते हैं कि इस संसार के निश्चय को छोड़कर ईश्वर में निश्चय लाओ, क्योंकि जीवन की सफलता वहीं से मिलेगी, मन की शांति आपको वहीं से मिलेगी। क्योंकि वाणी गलत नहीं हो सकती कि मानुष जन्म की सार विचार दुस्तर मन का करो सुधार। ये दुस्तर मन है, कठिन मन है, ये इसके सुधार करने के वास्ते मनुष्य जन्म मिला है, और सुधार करने का जो गुण है उसको सतो गुण कहते हैं। तो जो आध्यात्मिक जीवन है वो सतोगुण की कमाई का जीवन है, जो सांसारिक जीवन है वो रजोगुण और तमोगुण की कमाई का जीवन है। इसीलिए सत्पुरुषों का निर्णय है कि रजोगुण तमोगुण में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बदल जाता है, और यदि आप सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार प्रयास करते हो, कर्म करते हो, तब ये रजोगुण धीरे धीरे सतोगुण में बदल जाता है। और बिना अंदर ईश्वर का निश्चय आए ये कभी भी सतोगुण में नहीं बदल सकता। ये बाहर की उपासना करके उल्टी सीधी जैसे मन चाहा, उपासना भी आपकी वासना पूर्ति के लिए, कैसा बंधन पाल रखाया। ईश्वर की उपासना वासना से निवृत्ति के लिए की जाती है, और आप ईश्वर की उपासना में कामना पूर्ति के लिए कर रहे, कहां बुद्धि मारी गई हमारी, कोई समझ नहीं है जिंदगी। इसलिए जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है, और यदि आपने सत्संग के लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, और वो भी नकली सत्संग नहीं जहां राग रंग होते रहे, बुद्धि का प्रकाश कुछ भी ना मिले, जिस तरह आप विचार सुन रहे हो इस प्रकार विचार वाला सत्संग चाहिए, ये सत्पुरुषों के विचार हैं। तो याद रखिए फाइनल चीज, एक विचार एक आधारा, सिमर गोविंद पावे निस्तारा। इस दुख से, इस बेचैनी से तुम्हें छुटकारा प्राप्त करना है तो एकमात्र रास्ता है कि कि प्रभु का आधार तेरे जीवन में होना चाहिए। तूने भोगों को जीवन का आधार बना रखा है जो तेरे डूबने का रास्ता है। इसलिए मानुष जन्म सफल करें, होश में जीवन व्यतीत करें, सांसारिक जीवन के मुकाबले में आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करें। इसका मतलब ये नहीं है सांसारिक जीवन छोड़ देना है। महाराज कह रहे हैं प्रेमी मर्यादा में रहते हुए समय सीमा बांध कर तू स्वार्थ भी काम पूरा कर और परमार्थ का काम भी पूरा कर। जब ये बैलेंस लाइफ हम व्यतीत करेंगे तो एक दिन हमको चैन मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।